नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यांता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर मोहम्मद मुइज़ू से आज भेंट करेंगे। भारतीय वायुसेना ने चेन्नई का मरीना बीच पर 92वें वार्षिक वायुसेना दिवस समारोह पर विशाल एयर शो में वायु सैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मंगलवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। मुंबई में आग लगने की घटना में 7 लोगों की मौत। इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक के आह्वान के बाद फ्रांस और इजराइल के बीच विवाद शुरू हुआ। दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। वहीं भारत तथा बांग्लादेश के बीच पहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम ग्वालियर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़ू भारत के 5 दिन के राजकीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज उनसे भेंट करेंगे। कल सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुइज़ू का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बैठक के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। मालदीव के राष्ट्रपति का शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ का कार्यक्रम है। अपनी यात्रा के दौरान डॉ मुइज़ू आगरा, बैंगलोर और मुंबई भी जाएंगे। भारतीय वायुसेना की 52वीं वर्षगांठ को चेन्नई में 72 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों के शानदार प्रदर्शन के साथ मनाया गया। भारतीय वायुसेना में शामिल चेतक, राफेल, डकोटा, हार्वर्ड, MIG तथा जगुआर ने एयर शो के दौरान बेहतरीन करतब दिखाए और अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। इस समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, राज्य के मंत्री और रक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित हैं। पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और 8,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। एयर शो के कारण चेन्नई हवाई अड्डे पर हवाई सेवाओं में बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मंगलवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोर शोर से जारी है। सुचारू मतगणना के लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतगणना केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 67% वोट डाले गए। राज्य के सभी 90 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान हुआ था। मतदान प्रक्रिया के शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न होने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को विभिन्न जिलों में स्ट्रांग रूम्स में 3 स्तर की कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्ट्रांग रूम 8 अक्टूबर को चुनाव अधिकारी, उम्मीदवारों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में खोले जाएंगे। ईवीएम को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर तथा इस महीने की पहली तारीख को 3 चरणों में वोट डाले गए थे। तीनों चरणों में कुल मिलाकर 63.88% वोट डाले गए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। मुंबई के चेंबूर में आज आग लगने की घटना में 3 नाबालिगों सहित एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना निचले तल पर बनी दुकान में बिजली के तारों में आग लगने के कारण हुई। आग की चपेट में आए लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना की जांच अभी जारी है। इजराइल ने लेबनान में हमले तेज करते हुए बेरूत शहर के दक्षिणी इलाकों में भीषण हवाई हमले किए हैं, जिससे शहर में भारी तबाही हुई है। लेबनान के एक सुरक्षा अधिकारी के अनुसार कल उसने उत्तरी शहर त्रिपोली में हमला किया। कल हवाई अड्डे के निकटवर्ती इलाकों सहित बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में इजराइल ने कम से कम 8 हमले किए। इससे पहले इजराइल की सेना ने लोगों से इस क्षेत्र से चले जाने को कहा था। इजराइल ने गजा में देर अल बला में एक मस्जिद पर भी बमबारी की, जिसमें 21 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हुए। लेबनान में इजराइल के हमलों में कल 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्ला और हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर कल पहली बार उत्तरी लेबनान में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर बमबारी की। क्षेत्र में भीषण संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी शरणार्थियों सहित हजारों लोग लेबनान छोड़ने पर विवश हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बहुपक्षीय विकास बैंकों की मजबूती के लिए G20 विशेषज्ञ समूह की 30 मई से 27 सिफारिशों पर विचार के लिए विश्व बैंक की सराहना की है। कल प्रोफेसर निक स्टर्न के साथ नई दिल्ली में चर्चा में उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराया जाना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जलवायु परिवर्तन पर ठोस कार्रवाई के लिए जरूरी है। प्रोफेसर स्टर्न बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान गठित विशेषज्ञ समूह के सदस्य हैं। प्रोफेसर स्टर्न ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अत्यंत पिछड़े देशों यानी ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने में भारत की भूमिका की सराहना की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के फोकरन फील्ड फायरिंग रेंज में कम दूरी की चौथी पीढ़ी की हवाई रक्षा प्रणाली VSHOR-ADS के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण पिछले 2 दिन में अत्यधिक तीव्र गति के लक्ष्यों पर किए गए हैं। इन परीक्षणों में अत्यधिक दूरी के बहुत कठिन मानदंडों तथा अत्यधिक ऊंचाई के इंटरसेप्शन का प्रदर्शन किया गया। एक वक्तव्य में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन परीक्षणों में विभिन्न लक्ष्यों में अस्त्र प्रणाली की प्रहार करने से लेकर मारक क्षमता की पुनरावृत्ति का प्रदर्शन किया गया, जिसमें लक्ष्य के सामने बढ़ने, दूर हटने और पार करने के मोड शामिल थे। ये प्रणाली मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने अन्य DRDO प्रयोगशालाओं तथा विकास से उत्पादन साझेदारों के सहयोग से इस सुरक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार की है और इसे देश में विकसित भी किया गया है। इस परियोजना की शुरुआत से ही इससे 3 सेवाएं जुड़ी रही है और इसके विकास परीक्षण के दौरान शामिल भी रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके सफल विकास परीक्षण में शामिल DRDO सशस्त्र बलों और इसमें शामिल अन्य उद्योगों की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित नई मिसाइल हवाई खतरों के विरुद्ध सशस्त्र बलों को और उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान करेगी। महाराष्ट्र में लातूर के पूर्णमल लोहाटी सरकारी तकनीकी कॉलेज के छात्रावास में कल विषाक्त भोजन खाने से 7 छात्रों को विलासराव देशमुख मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और भोजन के नमूने परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं। घटना के बाद सांसद डॉ. शिवाजी कालगे और जिला कलेक्टर वर्षा ठाकुर ने अस्पताल का दौरा किया। वहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आज विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है। यह दिवस सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित प्रतिभाओं के प्रति सम्मान पैदा करने के प्रायोजन से आयोजित किया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क में क्षति से पैदा होने वाली समस्या है। ये क्षति जन्म से पहले, प्रसव के दौरान या जन्म के बाद लगभग 3 वर्ष तक हो सकती है। आज सेरेब्रल पाल्सी दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध हथियार की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 16 हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को धन उपलब्ध कराने की जांच के सिलसिले में कई ठिकानों पर तलाशी ली है। NIA ने जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 26 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर, असम में ग्वालपारा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जालना और मालेगांव में जम्मू कश्मीर के रामबन में और दिल्ली में की गई। छापेमारी के दौरान NIA को मिले दस्तावेज और उपकरणों की जांच की जा रही है। संदेह है कि इस मामले में शामिल संदिग्ध युवाओं को कट्टरपंथी बनाने उन्हें भारत की फिर से सुने छापेमारी के दौरान NIA को मिले दस्तावेज और उपकरणों की जांच की जा रही है। संदेह कि इस मामले में शामिल संदिग्ध युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, उन्हें भारत में आतंकी हमले करने और आतंकवादियों से जुड़े दुष्प्रचार में लिप्त थे। उन्होंने जैश ए मोहम्मद से प्रेरित जमात गुट में युवाओं की भर्ती भी की थी। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच दुबई में दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ। शुक्रवार को भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अपना पहला मैच हार गई थी। इस बीच पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हरा दिया है। इधर भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज ग्वालियर में शाम 7 बजे से होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।